ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार का निर्णय लिया है। इस पर 3,626 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई मेट्रो लाइन में अतिरिक्त 12.75 किलोमीटर की लंबाई जोड़ी जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की घोषणा के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी सरकार देश के किसानों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी। ये क्लस्टर 200 एकड़ से अधिक भूभाग में विस्तारित होगा। इससे 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की संभावना है। ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण जैसे मुख्य क्षेत्रों में विनिर्माण में सहायक होगा। इस परियोजना की समीक्षा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के युवा प्रचारक रहे श्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। श्री मोदी ने आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री शाह ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री शाह ने आपातकाल के दौरान लोगों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी को आपातकाल की यादों को अवश्य जीवित रखना चाहिए ताकि इसे कभी दोहराया न जाए। आपातकाल के विरुद्ध श्री मोदी की लड़ाई का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 25 वर्षीय एक लड़के ने इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध किया था।
जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान हत्या दिवस 1975 में आपातकाल के दौरान तानाशाही और सेंसरशिप के विरुद्ध लड़ने वाले साहसी योद्धाओं को याद करने का एक अवसर है। 5 अध्याय में विभाजित ये पुस्तक दर्शाती है कि आपातकाल ने युवा नरेंद्र मोदी की राजसत्ता, राजनीतिक लामबंदी और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका की समझ को कैसे प्रभावित किया। भारत के सुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन के लिए कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही देश के लिए पहला संदेश भेजा। शुभांशु ने कहा कि यह एक अद्भुत यात्रा है और तिरंगा गर्व से मेरे कंधे पर है।
40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष मिशन के लिए बधाई दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले साल से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।